ओम शांति। 2 जुलाई 2023 आज की अव्यक्त मुरली जो रिवाइज हो रही है, बाबा ने चलाई थी 26 जनवरी 1995 को। आज की मुरली का विषय है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान बरदार और वफादार। ये 2 कदम ब्रह्मा बाप के हैं जिनको अपने जीवन में लाने की। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से देखना है। चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे। स्नेही कौन से होते हैं? जिनको बाबा से प्यार है। बाबा से प्यार है तो फर्स्ट स्नेह यही होता है कि हम बाबा की रोज मुरली सुनते। और सहयोगी कौन से होते हैं? जो बाबा के सेवा में सहयोगी बने। फिर शक्तिशाली कौन से होते हैं? जो योगी हो। जो योगी होंगे और योगी के जितने ज्यादा अनुभवी होंगे उतने शक्तिशाली होंगे। मतलब बाबा की श्रीमत पर चलने वाले योगी और जितनी ज्यादा बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी होंगे उतने शक्तिशाली। इसी बात पर सारी मुरली का आज पहली लाइन में ही सारा सार है। बच्चों को देख रहे हैं, स्नेही सभी बच्चे, सभी बच्चे स्नेही हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति। शक्तिशाली कैसे हैं? यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब जितना उन्होंने पुरुषार्थ किया। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह। जितना बच्चे बाबा से प्यार करते हैं बाबा अपने उस स्नेह को पदम गुणा कर देते, उतना पवित्र, उतना श्रेष्ठ, न्यारा और प्यारा कर देते हैं। सहयोग प्राप्त होता है। बाबा की तरफ से क्या सहयोग है? बाबा कोई हमारा सहयोग करता है? क्या करता है? केवल ज्ञान देते। बाबा का सहयोग हमारे प्रति, बाबा का हमारे प्रति स्नेह सिर्फ ज्ञान देना है। अब उस ज्ञान से किसको उमंग उत्साह आएगा? जो जितना ध्यान से पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो खाली लाइने पढ़ डाल गया तो पढ़ डालेगा, मैंने मुरली पढ़ ली, उसको भी उमंग आएगा आज मैंने मुरली पढ़ी है। उसको भी उमंग आएगा जिसने जितना ध्यान से पढ़ी है। जितना ध्यान से पढ़ी है, जितना उसको बुद्धि में मंथन करेगा उतना आनंद बढ़ता जाएगा। एक ने पढ़ा, एक ने ध्यान से पढ़ा, एक ने अच्छा मनन चिंतन किया, उसको अपने जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ किया, जितना जो उस पर वर्क करेगा उतना उसको ज्यादा मतलब जो है ना प्राप्ति होगी। सुने और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भाव का रिटर्न मिलता है। जो शक्तिशाली बच्चे हैं, जो बाबा को अच्छी तरह से मनन चिंतन करते हैं, जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको फिर विजयी भाव का रिटर्न उतना ज्यादा मिलता है और सहज मिलता है, सदा सहज मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चों को सदा सहज मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होते, स्नेही जो बच्चे हैं यथा शक्तिशाली, मतलब जितना उनका पुरुषार्थ उतने वो शक्तिशाली होने कारण सदा सहज विजय को अनुभव नहीं कर पाते। क्योंकि यदि पूरे शक्तिशाली हैं, बाप समान शक्तिशाली हैं, समान शक्तिशाली हैं, तो उनकी विजय निश्चित है। परंतु जो यथा शक्तिशाली होने कारण वो सदा विजय को अनुभव नहीं कर पाते, कभी सहज कभी मेहनत, उनको कभी तो सहज लगता है और कभी उनको मेहनत लगती है। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को भी सहज करने का सहयोग देते हैं। बाबा तो क्या करता है, सहयोग देता है, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही है। जिनको बाबा से स्नेह होता है तो कहीं ना कहीं वो सहयोगी भी रहती हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने कारण, क्योंकि उनका बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं कारण, सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है, क्योंकि जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उन्हें अनुभव होगा कि बाबा ने हमारी मदद की, बाबा ने हमें सहयोग, वही प्राप्ति। पढ़ना प्राप्ति नहीं, कितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे वो हमें बाबा की तरफ से सहयोग का अनुभव होगा। और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त है, शक्तिशाली जो समान बच्चे हैं वे सदा योग युक्त है। इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं, बाबा प्यार दोनों को करता है, प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, कि सभी बच्चे चाहते हैं कि हमें बाबा से प्यार भी मिले और हमारी विजय भी हो। लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते, सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। सारी शक्तियों का अधिकार तो बाबा सब बच्चों को देते हैं कि सभी बच्चे जितना लेना चाहो सारी शक्तियां आपकी हैं, ले लो। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, कोई अंतर नहीं करते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते, सब आत्माएं लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं, क्या देते हैं? नहीं देते। घर में मुरली पढ़ लो, नहीं देते, मुरली वही रहेगी ना। अब रिवाइज कितनी भी अच्छी तरह कोई करे बैठ करके, घर में बैठकर कितनी बार मुरली को रिवाइज करे, वो उसकी अपनी मेहनत है। बाबा उसको कोई स्पेशल ट्यूशन देने नहीं जाते, बाबा की ट्यूशन तो यही है मुरली बस। अब इसको कैसे पढ़ना है, नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग अलग पालना, पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसा है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है। लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है, कितना अंतर हो जाता है। कहां अश्वरतन और कहां 16108, कितना अंतर हो गया। कौन आठ में आएंगे और कौन 16000 में आएंगे, ये अंतर क्यों हुआ पूछ रहे हैं बाबा, ये अंतर क्यों हुआ। पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना। पढ़ाई और पालना को बाबा ने पढ़ाया, पालना दी, वरदानों को धारण करना और उसे कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। लेकिन कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता, समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता, फर्क पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर वार क्यों बना, नंबर वन क्यों बना, ब्रह्मा बाप नंबर वन क्यों बना। दो कदम पहले सुनाए ना, दो कदम पहले सुनाए ना। तीसरा, सदा बाप, अब ये पता नहीं पहले सुनाए, दो तो अभी पढ़े हमने ना, फरमानदार, बरदार और वफादार। तीसरा, सदा बाप शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार, यही है पहला। तो आज तीसरा कह रहे हैं आप, दो पहले पहले किसी मुरली में सुनाए होंगे, तो सदगुरु शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने और हर फरमान को जी हाजिर किया। मतलब ब्रह्मा बाबा बाप शिक्षक और सदगुरु के क्या बने, फरमान बरदार बने, हर फरमान को जी हाजिर किया। जो फरमान बाबा ने दिया, चाहे बाप के रूप में, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे सतगुरु के रूप में, फरमान बरदार बने, हर फरमान को जी हाजिर किया, हर फरमान को क्या किया, जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजाने के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना, सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना भी है और बनाना भी है। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। मतलब ब्रह्मा बाबा ने पहले दिन से जितना समझ में आता गया उतना सेवा में लगाते, लास्ट दिन भी अपना समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया, बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। आखिरी दिन भी सारा दिन काम किया, एकदम मतलब, हाँ जी, बेशक सवेरे मुरली सुनाने की हिम्मत नहीं थी, देर से बाहर आए, परंतु उसके बाद जब आए तो सारा दिन काम किया, सारा बाप मम अपना दादी को बताया समझाया। क्या कर, दादी ने क्लास दादी ने करवाई थी सवेरे, शाम की क्लास, शाम की क्लास जो है ना करवाई, और क्रॉस करवाने के बाद ही और सबको खाना भी पहले खिला दिया, तो खाना पहले खिला दो ताकि भूखे बेचारे बच्चे 3 दिन तक भूखे रहेंगे। कैसे अलविदा भी किया। ये देखो ना कि पहले पता लग गया, कुछ आइडिया हो गया कि क्लास कराने से पहले खाना खिला दो। विद्या धन किस काम का जो समय पर काम ही नहीं आया, चाहे वो कैसा भी धन हो, हमारे पास घर में कुछ भी रखा हो। हाँ क्या है, लाइब्रेरी है ऐसे तो बहुत बड़ी, दुनिया भर की किताबें भरी पड़ी हैं, वो तो उसको हमें पता ही नहीं क्या है, जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे। शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार। नंबर वन बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना, स्नेह की निशानी है, प्यार होता है तो उसका निशानी क्या होती है, जिससे प्यार है, प्यार है, कोई कठिनाई नहीं होती, प्यार है, क्या सबूत है कि इसको मेरे से प्यार है, कहना मानते, क्योंकि प्यार का सबूत है, मेरी इतनी सी बात तो तुम मानते नहीं, क्या प्यार करते हो। हाँ मतलब बाबा कहते प्यार मेरे से इतना कहना नहीं मानते, क्या प्यार करते हो। तो स्नेह का सबूत है फॉलो करना, कहना मानना। समझा नहीं बात, किसके लेके पूछ रहे हो? ब्रह्मा बाबा के दो स्वर वो बता रहे हैं, विशेषता है वो तो शिव बाबा समान बनना, समान तो शिव बाबा समान, स्नेह की निशानी मतलब प्यार का सबूत क्या है, फॉलो करना, कहना मानना। तो चेक करो, अब हमें शीशा दिखा रहे हैं, चेक करो आदि से अब तक सर्व खजानों को स्वयं के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक सांस, एक संकल्प, एक सेकंड व्यर्थ तो नहीं गंवाया, व्यर्थ तो नहीं गंवाया। पूछ रहे बाप का फरमान है कि एक सेकंड, एक संकल्प, एक श्वास वेस्ट नहीं करना, और यदि हमने वेस्ट किया तो बाबा को फॉलो नहीं, बाबा का कहना नहीं मानना, अब क्या करें, अब कुछ कर सकते हैं? कहां के क्या कहें, क्या अच्छा आगे से। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, अब पूछ रहे हैं क्या करें, प्रैक्टिकल में लाया। दूसरा वाक कभी लाया कभी नहीं लाया, किस में आते हैं, कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे, कौन सी लिस्ट में जाएंगे, फरमान बरदार वाली लिस्ट में जाएंगे। अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? क्या फरमान बरदार की लिस्ट में होंगे? तो फरमान बरदार वाले तो कभी कभी का चक्कर नहीं है ना, हमारा जो कभी बाबा का कहना माना कभी नहीं माना वो फरमान बरदार वाली लिस्ट में तो नहीं है, आउट हो गया। नहीं, कोशिश को तो बाबा खत्म कर दिया। बाबा ने कहा करूं बताओ, खत्म। बाबा ने बाकी सारी बात खत्म कर दी। बाबा ने एक कह दिया, अब आपका नाम कहाँ है बता दो बस। आगे आगे की तो आप जानो, करोगे करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे, आगे वो हमसे नहीं पूछ रहे बाबा। बाबा तो सिर्फ ये कह रहे हैं अब बताओ कि अब आप फरमान बरदार की लिस्ट में हो। तो अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी, सर्व खजानों के क्या हो, ट्रस्टी मालिक हो। क्योंकि ट्रस्टी हो, आपको कहा है कि इसमें एक पैसा भी वेस्ट नहीं करना और आपने एक पैसा वेस्ट कर दिया। वो बढ़ेंगे, परंतु आपने यदि एक रुपया वेस्ट कर दिया तो फरमान बरदार के तो खत्म हो गया ना, फरमान बरदार तो खत्म हो गया ना। आपने बाबा का फरमान तो नहीं माना ना, अमानत में ख्यानत कर दी ना। ये भी एक सेकंड भी आपने वेस्ट किया, एक संकल्प भी आपने वेस्ट किया, ये भी तो खजाना है ना। चलो, जो भी है चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, इस समय तो वेस्ट किया तो आप कहाँ हुए। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो। क्या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं? हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या करें, इसमें बाप का क्या जाता है? नहीं, लाइन कैसे ढूंढ के लाया है ना बाबा, है ना? बालक से मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? हमारे संकल्प थे, हमने वेस्ट किया, बाप का क्या गया? बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अब हिसाब क्यों लेते हैं? याद आ रही है बाइबल की वो तीन स्टोरियां, तीन बच्चों को का अनाज दे के जाता है एक बुढ़ा, तीन बच्चों को ज्ञान तीन बोरियां दे के जाता है, मैं आऊंगा हिसाब लूंगा। तो पहले वाला बच्चा यही कहता है ना, बाबा जी शब्द को यूज कर रहा है, आया बच्चा बड़ा बाप, एक बोरी दे के जा रहा है, कहते आके हिसाब लूंगा, रख दे इसको टांड के ऊपर, आएगा तो ले लेना अपना पूरी दे, पूरी दे के जा रहा है, हिसाब मांगेगा हमारे से। तो बाबा कोई बाबा ये बच्चों बच्चों की आवाज को समझ रहे हैं बाबा। बाप ने दे दिया, तूने एक बोरी देनी थी दे दी, अब हिसाब क्यों लेता है भाई? बाप का काम है बच्चे से हिसाब ले, है कोई काम? अब बाप है बच्चे से हिसाब ले सकते हैं? बच्चे नहीं देते हिसाब, बच्चे दे दिया दे दिया, अब उसका क्या हिसाब मांग रहे? हाँ हाँ, बच्चे बाप को हिसाब देने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। तो बाबा जानता है, ऐसे बच्चों को भी जानता है ना। अब हिसाब क्यों लेते हैं भाई? दे दिया तो दे दिया। नहीं, अब कहते नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो। फसाने का तरीका बाबा के पास पता है, बोलेंगे ना बच्चे कि सब तेरा है मेरा नहीं है, कहते हो ना? हाँ भी करवा रहे, कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। कभी मेरा कभी मेरा टाइम, टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा, घर गए तो मेरा, स्कूल में आ गए तो तेरा, मंदिर में चले गए तो तेरा, घर गए तो। जब हमारा मतलब हो तो मेरा वैसे बाबा तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो हैं जी, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों प्रति लगाया, बच्चों प्रति। रात्रि में भी जगा जाग कर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, योग की शक्ति देते रहे, ये चरित्र तो सुने हैं ना। ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना, फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया। ब्रह्मा बाप को फॉलो किया कि सुन लिया, पढ़ लिया। सुनना अर्थात करना, मतलब सुना है तो फिर करना है। किस लिए सुना? करने के लिए सुना। तो तीसरा कदम, जी हाजिर, सदा हजूर, हाजिर और नाजिर। हाजिर माना उपस्थित और नाजिर माना नजर में आना, उर्दू का शब्द है नजर में आना, दिखाई भी देना। हाजिर है, दिखाई भी दे, हाजिर और नाजिर नजरों के सामने। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे, रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर। अनुभव किया, अनुभव किया कि बाबा हमारे साथ है। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया और कर्म में सदा हां जी किया। हां जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो, आप क्या फॉलो करते हो? कभी हां जी कभी ना जी तो नहीं करते, कभी हां जी कभी ना जी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ, प्यार का सबूत। प्यार का सबूत क्या होता है? वो कहे कुएं में गिर जाओ तो गिर जाओ, कहना पूरा मानना। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं, ऐसे नहीं सोचना। मेरे दिल में देख लो, बताओ क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं, बताओ। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं, सुनाया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। कितना प्यार मैं बाबा से करता, बाबा कहते हैं। लेकिन सबूत दिखाओ, क्या दिखाऊं कैसे सुनाऊं, नहीं लेकिन सबूत दिखाओ। आज बाबा पूरा सीधा बन के बैठा है, एकदम अलर्ट। दिखाओ सबूत है फॉलो फादर, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं, नहीं दिखाओ कहां है सबूत। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में। तो कर्म किसके साथ होगा? जब हम दूसरों के संबंध संपर्क में लेन देन करेंगे वो कर्म होगा। तीनों में सदा फॉलो फादर हैं, सबूत दो। सबूत दो तीनों में। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? समझ तो लिया है, ये काम ऐसे करना है, पता है ये कर्म ऐसे करना है, वो तो बुद्धि तक तो आ गया, वो तो प्रैक्टिकल में आया, पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, वो तो प्रैक्टिकल किया। बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है, रिजल्ट में देखा जाता है। अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50। ये रिजल्ट निकालें बाबू कि तुमने 100 बातें समझ ली हैं, पर तो जीवन में प्रैक्टिकल 50 है। तो उनको फॉलो फादर कहें, पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं, फॉलो फादर कहें, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आज लिस्ट में से बाहर निकाल रहा है, फरमान बरदार वाली लिस्ट में से भी बाहर निकाल दिया, फॉलो फादर वाली लिस्ट में से भी बाहर निकाल दिया। आप क्या समझते हो, वे फरमान बरदार हैं? फॉलो फादर नहीं करते, बाप का पूरा कहना नहीं मानते, तो क्या उनको फरमान बरदार कहें कि आप आधे में राजी हैं? आधे में राजी हो या पूरा चाहिए? चाहिए तो पूरा। हाँ, आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन में कौन कौन आएंगे, गोल्डन एज में कौन कौन आएंगे, माला बनाते थे। अब जो नहीं आते थे तो वो कहां चले जाते थे, सिल्वर में चले जाते, तो दो मालाएं बन जाती थी, गोल्डन और सिल्वर की लिस्ट निकालते थे। अच्छा, तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर उनको बता दें कि तुम्हारा नाम तो सिल्वर में है, तो कॉपर बन जाएंगे, कहेंगे अच्छा हमारा नाम सिल्वर में है, और डिले हो जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं। कब की है मुरली? 26 जनवरी 1995। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। जो भी हुआ, पर तो 2000 सामने खड़ा था कि बस खत्म होने वाला है, तब सबकी बुद्धि में था कि 2000 में स्वाहा। तो भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया, ब्रह्मा कुमारी तो कहती आ रही है समय आ गया, समय आ गया। फिर वो कहानी सुनाते हैं, शेर आया, शेर आया, तो जब शेर आएगा तो कहने वाला कोई नहीं होगा शेर आया, आएगा ना। अरे ब्रह्मा कुमारी जब सारी दुनिया को थका देंगी, शेर आया, शेर आया, तैयारी कर ले, कहां देखो 40 में भी कहा, फिर मतलब जो ना 45-46 में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था तब कहा, फिर जो है ना 76 में कहा, फिर 2000 में कहा, आप 36 में कह रहे हैं,
फिर पता नहीं कब कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों का कोई भरोसा नहीं है। और शेर आया कहते रहेंगे, जब दुनिया का विश्वास खत्म हो जाएगा फिर शेर आएगा, फिर शेर आएगा, फिर कहेंगे बस। और 35-36 जैसे निकलता जाएगा कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, देखा सारे विश्व में एक बार शांति भी हो जाएगी। और नहीं, वो तो हो ही रहा है, परंतु एक अति में, एक बार अति में जाकर शांति आएगी, अति में जाकर शांति आएगी। फिर ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत जोर से कहेंगे, ये ब्रह्मा कुमारियां कहती है विनाश विनाश विनाश, देखो अब सारा संसार कितना शांत हो गया है, अब कोई झगड़ा होने वाला नहीं। और नहीं, एक ही सेकंड में फिर खत्म, मतलब फिर पता ही नहीं लगेगा कि कब वो सारे चले ही जाएंगे, क्योंकि बाउंस चलेंगे, क्योंकि हिसाब तो बराबर हो जाएगा ना, मैक्सिमम सोचो ना कि हिसाब बराबर हो गया हमारा, अनेक आत्माओं के साथ मैक्सिमम अकाउंट खत्म हो जाएगा ना, बाकी तो थोड़ा सा ही रह गया ना। मान लो विनाश होने में एक दिन है या 10 दिन है या 2 महीने है, तो हिसाब तो हमारा बहुत ही थोड़ा रह गया ना, 2 महीने का रह गया ना, कहाँ इतनी सारे 5000 साल का हिसाब किताब, तो बाकी 2 महीने का रहा है ना, तो 2 महीने का बुरा बुरा लगभग खत्म हो गया, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा भी रहा होगा, तो अच्छा भी बराबर करेंगे। और उसके बाद एकदम अचानक सारा शांति, क्योंकि भय के कारण रुक जाएंगे, भय इतना बैठ जाएगा, इतनी चारों तरफ मर्डर, मतलब क्या कहते हैं ये सारे मौत के जो बम्स वगैरह चलेंगे, हो चुके होंगे, जिसके कारण सारे सहम जाएंगे, और वो सहमना शांति का रूप लेगा। परंतु उसके बाद जिनको चोट तो उसका साइड इफेक्ट, तो शांति के बाद तो साइड इफेक्ट पड़ेगा ना, जो भी होगा, मतलब कहने का मतलब एक बार चारों तरफ ऐसा भी महसूस होगा कि अब शांति हो गई, और उसके बाद फिर हाँ मरने से पहले वाली शांति एक बार आएगी। बाबा ने इशारा दिया है ऐसा मुरली में, एक बार मरने से पहले ऐसा लगेगा।
ऐसे वो चूहा है, वो पहले फूंक मारता है, नरम करता है, किसी पता पहले शांति होगी।
सबको कहते हो कि समय आ गया, समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ, ये चैलेंज स्वयं भी स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है, हमने कितना पुरुषार्थ कर लिया समय प्रमाण, और ये भी लेके आओ। बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते, किस बात पर, किस बात पर मुस्कुराते रहते हैं जानते हो? एक तरफ मेजोरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, अंदर आता है बच्चों, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव दिखाती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि ये तो सब चलता है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, बाप दादा गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, तो क्या करेंगे,
मुस्कराएंगे। मुस्कराएंगे बाबा, बोलते मैं गुस्सा तो नहीं करूंगा, अभी अभी कहेंगे कि हमें एक भी सेकेंड, एक भी श्वास, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं करना है। और थोड़ी देर बाद माया के वशीभूत हुए और फिर कर दिया। अब आप दादा क्या करें, गुस्सा तो कर नहीं सकते, गुस्सा करे तो क्या होगा, कहेंगे ये भगवान नहीं है, ये बाप ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा को भी गुस्सा आए तो फिर वो परमात्मा ही नहीं है, बाप को तो गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा हुआ श्राप दे दिया, वो तो कहते भगवान ने श्राप दे दिया, परंतु बाबा कहते मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा, मैं तो मुस्कराऊंगा। इसलिए कृष्ण को भी देखा है कि आपने ना, वो भी मुस्कुरा। और ऐसे टाइम पर जब सामने वाला कोई गलती कर रहा हो तो वो भी मुस्कुरा, मतलब साइकोलॉजिकली दिखाते हैं कृष्ण गुस्सा नहीं करेगा। और जब क्या बोलते हैं, वो सुदर्शन चक्र उठा लिया भीष्म पितामह को मारने के लिए, तब क्या था, वो गलती से दिखा दिया। शल्य का जब सिर काट दिया तो क्या था, गुस्सा था कि नहीं था, मतलब वो बेशक कितनी भी कोशिश करें, जब गलत कर दिया वो परमात्मा नहीं। ये जो दूसरे धर्म वाले हैं इन्हीं बातों को लेकर कहते कि कृष्ण परमात्मा नहीं, परमात्मा को क्रोध नहीं आएगा, परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देगा। हाँ मतलब ये तो आगे वालों ने लिख दिया ना, मतलब जो आलोचक हैं वो तो कह देते हैं ना, आलोचक आलोचना करने वाले जो हैं, दूसरे विचारधारा वाले जो हैं, वो तो चेक करते हैं ना। अब ये जो एक कल्ट बन गया है, एक चैनल बन गया है कल्ट वाला, ठीक है ना, वो पूरा चैनल, वो ब्रह्मा कुमारी इसकी एक एक गलती को चुन चुन करके दिखा रहा है यूट्यूब चैनल कल्ट, CULT कल्ट के नाम से बनाया है। और वो ब्रह्मा कुमार इसकी मतलब इतनी गहराई से स्टडी ब्रह्मा कुमार नहीं करते होंगे जितना गहराई से वो स्टडी करके हाँ क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल, मतलब ब्रह्मा हमारे ज्ञान को देखो, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, पर तो ये है कि कम से कम वो अच्छी तरह गहराई से स्टडी तो कर ही रहे हैं, सुन तो रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। अभी उन्होंने अपना जो कौन है भाई, सूरज भाई, उसको दिखाया, सूरज भाई को दिखाया कि सूरज भाई ने 2000 पहले कहा था कि 2000 में विनाश हो जाएगा, और उससे पहले ये संस्था ने इस टाइम पर विनाश की डेट दी थी। हाँ जी, जो भी है, और कल्ट उन्होंने अपना रखा हुआ चैनल का नाम, और उन्होंने आज कहते हैं 2036 में विनाश होगा, तो 2036 में भी विनाश नहीं हुआ तो फिर ये कहेंगे 100 साल 2069 में होंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आयु 2069 में है, तब विनाश होगा। अब वो इसको अपनी तरफ से जो है ना कहते हैं कि ये जो है ना लूटने का धंधा है, लोगों को बहकाते हैं कि वो जो है ना बेचारे अपना धन संपत्ति सारी स्वाहा कर देते हैं और बाद में उनको पता लगता है विनाश हुआ नहीं। बहन जी बहन जी बहन जी, बात यह है कि आलोचना करने वाले का आलोचना करने वालों ने आलोचना करनी है, मतलब कहने वालों उससे हमें अब ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझना है, जो भी समझेंगे इससे प्रचार ही होगा। वो बेशक कुछ भी कर रहे हैं उन तक ये मैसेज जो है ना, जिनके पास पॉजिटिव जाना है वो जाएगा। हाँ नहीं, देखो हर एक प्रकार से वे जो भी आगे आएंगे वो अब ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे
जिससे संस्था का नाम खराब हो, है नहीं? कोई चीज जो बाबा जैसे भी आप बोलो वो आपने सोच समझ करके बोलना है, ताकि किसी प्रकार से भी बाबा का कार्य आगे बढ़े, रुके नहीं। आलोचक आलोचक अभी अपनी अपनी तरफ से अच्छी तरह से बोलो, सोच समझ करके बोलो, ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, बाबा को गुस्सा तो नहीं आएगा ना, मुस्कराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया। समय प्रति समय अब तो पुरुषार्थ को क्या कर दिया है, सहज इजी कर लिया है। अब कैसे बाबा कहानी बनाते हैं देखो, स्वभाव को इजी नहीं करते। बाबा कहते मैं स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहते। बाबा ने कहा कि योग में सहज, ताकि भारीपन नहीं, है नहीं? मतलब पुरुषार्थ में, मतलब जो है ना, जो धारणा करनी है उसमें तो पूरा टाइट रहना है ना, हाँ, वो एकदम एक्यूरेट, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना तो नहीं करना, एक संकल्प वेस्ट नहीं करना तो नहीं करना। ये नहीं कि वो करते रहे फिर सहज है ना, इसलिए सहज को उल्टा प्रयोग नहीं करना। कैसे उल्टा प्रयोग करते हैं, फिर सोचते हैं सहज योग है ना हमारा तो, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, पुरुषार्थ में क्या हो जाए, सहज, ठीक है करेंगे, कर लेंगे, फिर कर लेंगे, इसको सहज योग नहीं कहा जाता। क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती, शक्तियां मर्ज हो जाती, लुप्त हो जाती हैं, छुप जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो, जब नए नए ज्ञान में आए थे उस समय को याद करो, उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा, इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? उस टाइम तो अटेंशन बहुत था, उस टाइम तो इजी नहीं थे ना। अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, अभी और अभी अलबेलेपन के डाउनलोड के तकिए और बिस्तरे मिल गए हैं। अब क्या मिल गए हैं, सेंटर बड़े बड़े हो गए, साधन बहुत बड़े बड़े हो गए, डनलप के बिस्तरे मिल गए, साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है, साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था, आराम पसंद थे नहीं, और अभी थोड़ा थोड़ा है, अभी आराम पसंद थोड़ा थोड़ा है, साधन सेवा के प्रति हैं, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है कि गर्मी है कैसे सेवा करने जाएं। पहले गर्मी नहीं लगती थी तो अभी डनलॉप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियां बनो, पटराने बनो, भले पलंग पर सोवो, तो नीचे नहीं सोवो, भले पलंग पर सोवो लेकिन स्थिति पटरानी पटराने की हो। आपकी जो स्थिति है वो पटरानी और पटराने की हो, पटरानी और पटराने बोला जाता है जो नीचे पट पर सोते हैं। हाँ बाबा कहते हाँ 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 मतलब कहने का है कि नीचे सोने का मतलब क्या है कि अपनी धरती पर रहो, अपनी अवस्था को इतना अपने आप को आराम पसंद नहीं बनाओ, ठीक नहीं, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है वो अपने आप को, बाबा कई बार कहते गवर्नर जो आते थे माउंटबेटन है वो अपने आप को क्या लिखते थे सर्वेंट, हाँ मतलब वो अपने आप को मतलब ये नहीं लिखते थे कि हम गवर्नर हैं मतलब हम आपके मालिक हैं, नहीं और हम सेवक हैं, राजा भी ओबीडियंट लिखते हो या ना लिखते हो, बाबा ने मुरली में कहा है कि वो अपने को सर्वेंट समझते हो, क्योंकि लिखते कि नहीं लिखते मैंने कभी नहीं देखा, परंतु बाबा ने कहा कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो अपने को सर्वेंट लिखते हैं, मतलब इनकार नहीं करते, हम तो सेवक हैं, और तो आगे वाले कुछ भी हैं, अभी जैसे मिनिस्टर हैं वो बात अलग है, जितने के बाद तो वो मालिक बन जाते हैं, जितने से पहले तो वो सेवक कहते हैं ना, मैं आपका बेटा सेवक, ऐसे ऐसे पर्चे लगाते हैं बाहर, वो बैनर लगाते हैं, हम तो आपके, और जब तक अपने आप को सेवक कहते हैं, परंतु जीत गए तो वो मालिक बन जाते हैं, परंतु वो राजा बनने के बाद भी राजा अपने आप को प्रजा का सेवक समझते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती थी, परंतु धीरे धीरे पतित हुए वो एक अलग बात है। तो भले पलंग पर सोवो लेकिन सिद्धि पटरानी पटराने की हो, देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ थी, समझते क्या थे, हमने एक एक को बाप का संदेश देना है, अब भी वही हो, भाई बेशक सोवो पलंग पर, परंतु आपकी बुद्धि में सेवा घूमनी चाहिए ना कि मैंने क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, कैसे सबको बाप का, हाँ सेवा की प्लानिंग चलती रहे, कहने का भाव बाबा का है, समय में साधन नहीं थे लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही, जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं तो, क्योंकि अब इतना विस्तार हो गए हैं, साधन इतने ज्यादा हो गए हैं, अब उसके अंदर अब आप उसको छिपा नहीं दो, जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है, जो छोटा सा बीज था कितना बड़ा पेड़ हो गया, बीज छिप जाता है, तो साधना है बीज, साधना है बीज और साधन है विस्तार, क्योंकि आपके पास बीज था साधना की, उससे आज सारे इतने साधन आपको मिल गए, अब कितना क्लियर कर रहे हैं ना बाबा, साधन इतने ज्यादा हो गए उसमें आपकी जो साधना थी वो छुप गई, ठीक है ना, तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष, पहले कितना उमंग गुस्सा होता था, जगह जगह प्रदर्शनी लगाओ, मेले लगाओ, समझाओ, इधर समझाओ, पर्चे बांट के आओ, इस एरिया में सत्संग करो, उस एरिया में सत्संग करो, हर गली में सत्संग करो, कैसे भी आत्माएं निकले, और अब साधन इतने आ गए हैं चुपचाप आराम पसंद बनकर बैठ के, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो, बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया है लेकिन किया नहीं, बाबा कहते मैंने काम दिया परंतु किया नहीं, क्योंकि बाबा का ये तो मतलब मुरली में कॉमन क्लास में बात कर रहे हैं, मैंने तो वो क्लास देखी जिसमें बाबा ने कहता मैंने का एक दिन बाबा ने आना है, बाबा ने सूचना दे दी आज आऊंगा, और जब हम वहां पहुंचे तो बाबा ने नहीं आएंगे, जाओ अपनी फाइल लेके आओ, मीटिंग में, बोला हम अपनी फाइल लेके आ गए, फिर बताया कि बाबा कल आएंगे। मीटिंग में बाबा नहीं आते थे, जिसमें जब मीटिंग में जाते हैं ना, तो दादी ने मतलब अपना बाबा गुलजार दादी को कहा, प्रकाश पंडित दादी ने, कि बाबा को कहो कि इतने बड़े बड़े महारथी सारे भारत से आए हुए हैं, बाबा भी आवे। मतलब मीटिंग में मुझे पता चला कि बाबा नहीं आते, तब मेरे को पता लगा। तो उसके बाद दादी जो है ना अगले दिन सूचना दी सवेरे कि कल बाबा जो है ना कहा है कि मैं आऊंगा। ठीक है, कल बाबा आएंगे, तो वो आवाज तो सारे आसपास चारों तरफ फैल गई कि बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। तो सारे अपना आने का प्रोग्राम बना लिया, और फिर कल जिस दिन आना है उस दिन मना कर दिया कि बाबा कल आएंगे, आज नहीं आएंगे। तो बाबा आज नहीं आएंगे, और फिर जब हम गए मीटिंग में फाइल लेकर के, तो कहा सिर्फ मीटिंग वालों से मिलेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे। मेरा नाम मीटिंग में नहीं था। फिर दादी गुलजार के पास गए, उसने कहा सुरेंद्र भाई का नाम मीटिंग में लिखो, तो मेरा उसी टाइम मीटिंग में लिखा गया। मैंने दर्शन बहन जी लेके गए ना कि मेरे साथ ये भाई आएगा, ये इसका नाम जो है ना लिखवाओ। तब तो दादी ऐसे मिल जाती थी ना फटाफट, तो दादी ने तो अगले दिन बाबा आए, तो बाबा ने बड़ा उस दिन ऑफिशियल रूप था, कोई भी कॉमन रूप नहीं था, कि मैंने तुम्हें मीटिंग में काम करने के लिए दिया, तुमने नहीं किया, उसके बाद फिर मैंने एक दिन दिया तो भी तुमने नहीं किया। मीटिंग में करना था महा क्या मिलन की रास, हम आपस में कैसे मिलकर रहे, इस पर काम तुमने करने के लिए दिया, एजेंडे में लिखा हुआ है, और तुमने नहीं किया, अब बाबा करे। मतलब ये ऑफिशियल रूप था बाबा का, अब बाबा करे। और बाबा ने सभी भाई बहनों को खड़ा करके अच्छी तरह से क्लास ली थी, और मैंने अगले दिन देखा सवेरे आकर दादी प्रकाशमणि ने कहा मेरे को रात को नींद नहीं आई, और मैंने इन बड़ी बड़ी बहनों को स्टेज पर आते हुए लिटरली रोते हुए देखा कि आज के बाद हम मिलकर रहेंगे, बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं हम मिलकर रहेंगे। रो रही थी एकदम लिटरली, जो सारी बड़ी बड़ी बहनें थी। मीटिंग होती है हमारी, एनुअल मीटिंग होती है, उसमें एक बहन और भाई के झगड़े पर वो आए थे बाबा, दो सेंटर आपस में झगड़ा करके दो पार्टीशन हुए थे। तो वो दादी ने कहा भी हमारे बस की बात नहीं है, बाबा आए, उनका अंदर की बात तो ये थी। तो बहन भाई में झगड़ा हुआ तो एक एरिया बटा, तो बाबा ने आके कहा कि तुम आपस में नहीं मिलके रह सकते, विश्व को क्या तुम एक करोगे, हाथ मिलाओ सारे। मतलब एकदम बाबा का वो ऑफिशियल रूप था, वो मुरली बाहर नहीं आई। तो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि मैंने उसको देखा, और अगले दिन ये देखा। उस रात तो फिर रो ही रहे थे, बाबा थे ही थे सामने, बड़ी बड़ी दादियां बाबा के सामने ऊपर स्टेज पर गई और प्रतिज्ञा किया, सब मतलब करवा दिया बाबा से, उस टाइम तो कर दिया। अगले दिन सवेरे दादी जब क्लास में आई, मतलब सारे भाई बहन होते हैं क्लास के अंदर, तो दादी ने कहा, दादी के सामने सीनियर भाई बहनों ने, जो बहने थी जो खास मतलब जो मेन जोन इंचार्ज कहो, वो सारी बहने ऊपर एक एक करके आई, और उन्होंने कहा बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद आपस में कभी भी वक्ति ओम शांति। मेरे को लगा बस आज तो दुनिया में स्वर्ग आ गया। तब मुझे बाबा की बात याद आ रही है कि बाबा कहते लेकिन किया नहीं, काम दिया था लेकिन किया नहीं। मतलब मुझे एकदम सीधा वो बाबा की बात याद आई है कि भाई बाबा का ऑफिशियल रूप है ये, याद है क्या दिया था। उसने भी यही कहा था कि कापियों में है, काम दिया था कि बेहद की वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति पर स्वयं में भी चर्चा करो और आपस में भी बैठकर क्या करो, चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष, इस साधना के बीज को क्या करो, प्रत्यक्ष करो। तो किया, बाबा पूछ रहे हैं किया कि एक दिन डिबेट, सिर्फ डिबेट कर ली, आपस में बैठकर एक दिन चर्चा कर ली, वर्कशॉप तो हो गई लेकिन वर्क में नहीं आई। वर्कशॉप भी कर ली आपने, मेरा कहना माना, डिबेट भी की, वर्कशॉप भी की, वर्क में तो नहीं आई ना। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद की वैराग्य वृत्ति की बना। समझ में आ रहा है? वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा, अपने लिए पहले तो हमें अपनी सेवा करनी है ना, अपने आप को सुधारना है ना। मीन्स अपने आप को बेहद का बनाओ, अपने आप को क्या बनाओ, बेहद का बनाओ। वह सेवा स्थान की दिनचर्या बेहद, सेवा स्थान है तो सेवा स्थान की दिनचर्या बेहद की वृत्ति की बनाओ। जिसकी वृत्ति, सेवा स्थान की वृत्ति जो है ना बेहद की, व्यक्ति मेरी सेवा, मेरी अपनी वृत्ति बेहद की हो वह है अपनी सेवा, सेवा स्थान की वृत्ति बेहद की हो। पर सेवा स्थान पर जितने भी भाई बहन हो, जो कुछ भी हो, वो बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला हो। मतलब किसी को भी, किसी भी प्रकार का किसी से कोई अटैचमेंट ना हो, पर्सनल अटैचमेंट नहीं हो। यज्ञ की सेवा का अटैचमेंट हो, यज्ञ की सेवा करनी है, परंतु व्यक्तिगत अटैचमेंट, आत्मिक या रूहानी या जिस्मानी कोई अटैचमेंट नहीं हो कि ये बहन हो तो मैं सेवा करूं, ये भाई हो तो सेवा करूं, ये साथी हो, ऐसे हो तो, कोई साधन को, किसी व्यक्ति को नहीं। सब जो मिल जाए, जिसके साथ मिल जाए, जितना मिल जाए, सबके साथ मिलकर बेहद की वैराग्य वृत्ति के साथ क्या हो, सेवा स्थान हो। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई, तुम सेवा करो हम आराम करेंगे। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। ये अलबेला बन जाते हो ना तो फिर शरीर जो है ना कोई बहाने बीमारी का रूप ले लेता है। कैसे बता रहे हैं आगे बाबा, देखो पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता, मर्ज कर देता। आप सेवा करने जाना है, आपको अंदर खुशी है मुझे करने के लिए जाना है, तो बीमारी दब जाएगी, बाद में तेरे को देखेंगे, पहले सेवा करके आऊं, नहीं पहले सेवा करके आए। अब उसको वो बीमारी को, भूख को, प्यास को, सब कुछ को भी दबा करके क्या करते हैं, सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि दिल, दिल जहां होगा ना वहां राह बन जाएगी ना। तो मतलब अपने आप को, मतलब बीमारी ठीक, और जहां खुशी मिलती है जिस काम को करने से, क्योंकि सेवा करने से खुशी मिल रही है, बीमारी भी दूर हो जाती है। आगे कैसे कहते हैं बाबा, जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है दूसरे को करने दो तो क्या कहते हो? तो करने देंगे? देंगे। उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है? आपका सिर दर्द भी गायब, बुखार भी क्या हो गया। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? तो सिर दर्द भी आ जाएगा, सिर दर्द भी आ जाएगा और पेट दर्द भी आ जाएगा। आगे कैसे कहते हैं, आगे देखो, सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लगाओ, इसको बुखार है, इसको देखो, ठीक है कि नहीं। अब लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं, ऐसा बहाना लगाते हैं और जिसको कोई चेक भी ना कर सके। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे कि पेट दर्द है तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई। अब क्या होगा इसमें? बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी मर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो कि आप मधुबन में आ गए। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है, क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए, सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइफ, है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट, संबंध संपर्क में और स्थिति में लाइट। लाइट तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है? लाइट बनना आता है, हल्का बनना आता है या बोझ खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्नेह का सबूत आप देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत, तो कौन बजाएगा? माया भी ताली बजाएगी, माया ताली बजाएगी आपके लिए। वाह विजयी वाह, माया कहेगी वाह विजयी, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी कुछ क्या करो, परिवर्तन करो। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, मींस प्रैक्टिकल बाबा की श्रीमत पर चलो, अनुभवी बनो, चलने के भी क्या बनो, अनुभवी बनो, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो।
सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। सहज योगी का मतलब ये नहीं है जब मर्जी है करो, जब मर्जी है छोड़ दो। सहज योगी का मतलब जैसे मर्जी बैठो, जो भी काम करो, बाबा की श्री मत पर करो। इसमें कोई कठिन थोड़ा है, कर तो रहे हो, किसी न किसी मत पर तो कर रहे हो, चाहे माँ बाप की मत पर कर रहे हो, चाहे किसी पड़ोसी की मत पर कर रहे हो, चाहे अपनी मत पर कर रहे हो, पर मत या मन मत पर तो कर रहे हो। पर तो इन दोनों मतों को छोड़ कर सिर्फ मेरी मत पर कर लो, करना तो है आपने, किसी न किसी की तो मत पर कर दे हो, तो सहज है ना। एक मेरी मत पर करो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना मन मत पर करो ना पर मत पर करो। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, चेंज तो कुछ करना नहीं, सिर्फ दूसरे की मत को और अपनी मत को एक तरफ करना है। अलबेलापन नहीं लाओ, फिर कर लेंगे। सहज का मतलब अलबेलापन नहीं लाओ, सहज का मतलब अलबेला बनना नहीं, सहज का मतलब है जैसे चल रहे हो वैसे चलो, सिर्फ एक ही बात को हटाओ, मनमत परमत की जगह पर मेरी मत को ले आओ, बस काम तो वही करो। और तो करना कैसे है वो मेरी मत पर करो, रोटी भी बनानी है, घर के काम भी करने हैं, परिवार वालों से भी मिलना है, परंतु मेरी मत के अनुसार मिलो, अपनी मत पर नहीं मिलो, किसी दूसरे की मत पर नहीं मिलो, काम सारे वही करने, तो जैसे मैं कहता हूं सिर्फ करो वैसे, बस ये सहज ही है। बाप दादा देखते हैं कि स्वयं प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं करो, सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, परमत पर एक दो कॉपी करना मतलब परमत पर चलना, एक दो को कॉपी नहीं करो, किसको कॉपी करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों की देखने की आदत छोड़ो, ज्यादा हो गई है, दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर क्या हो गई है, नजदीक की नजर कमजोर हो गई है, दूर की नजदीक की नजर कमजोर हो गई है, दूर की नजर तेज हो गई है, तो आप क्या करेंगे? तो अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, आज नई चीज बताएगा। सीजन का फल क्या है, क्या देंगे? आज आपने भोग लगाने का रहस्य खोला है, वंडरफुल रहस्य खोला है। एक दिन हमने मुरली पढ़ी थी जिसमें तिलक भी फ्री का, ताज भी फ्री का, तख्त भी फ्री का दिया था। आज रियल भोग दिया है, फ्री वाला, पैसे वाले भोग के लिए मना किया है। कैसे कहता है बाबा देव, हाँ फ्री वाला भोग खिलाओ। असली भोग तो यही है जो आज बाबा कह रहे हैं, भोग लगाओ। ये फल है नहीं, सीजन का फल क्या है, क्या देंगे? सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है, पूछ रहे हैं बाबा। मैं बाबा आया, आप बाबा से मिले, मिलन मनाया, मुरली सुनी, ये फल है। फिर सीजन में जाते हैं बाबा से मिलने के लिए,
हर सीजन का फल होता है ना, गर्मियों का सर्दियों का हर सीजन के फल होते हैं ना। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? बाप दादा को भोग लगाने के लिए कह रहे हैं, इस सीजन का फल क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो, फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार में मिल जाता है। वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सीजन ये फल है तो मुझे देखेंगे, लगाना है, भोग लगाएंगे, लगाना है या मुश्किल है? फिर से देखो एक लाइन बीच में, अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे आप, या भोग लगाएंगे? बताओ क्या भोग लगाओगे? पूछ रहे हैं, लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर वन भोग कहां से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, राजे बच्चे हो, अब गुणी देख रहे हैं, ठीक है क्या नहीं, कभी ना नहीं करते हो, हां हां करते हो, खुश कर देते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे? भोग तो अभी लगाना है ना, बाबा अभी बैठा है, बाद में क्या मतलब होगा। टीचर्स नंबर वन भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी भोग लगाते हैं घर में, लगाते हो ना घर में भोग, कि खुद ही खा ले, खा जाते हो, भोग लगाते हो खुद खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का काम है, सबसे लेना चाह रहा है, छोड़ नहीं रहा है किसी को भी, सभी का काम है। तो फल बता दे बाबा। इतनी देर से तो फरमान बरदार का कदम व्यक्ति कल में लाना है। इस फल का भोग लगवाओ, ठीक है। चौथा कदम वफादार, कभी भी मन से बुद्धि से संकल्प से बाप के बेवफा नहीं होना, बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प में भी दे के संबंध, दे के पदार्थ, देधारी व्यक्ति आकर्षित न करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर पर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता, तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती, वफादारी खंडित हो जाती, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती, तो कहीं आकर्षित हुए तो बेवफा हो गए। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति व वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गिना जाए, खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो, खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहां एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना, आता है चेक करना, आता है ना? अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान की संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों को भी बाप दादा को याद, नमस्ते नमस्ते। वरदान, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव, साक्षीपन की स्थिति द्वारा, कौन सी स्थिति? साक्षीपन की स्थिति, बस साक्षीपन का मतलब क्या होता है? साक्षीपन का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी सामने देख रहे हैं उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं, आग लगे, बाढ़ आए, खुशी की न्यूज हो, कैसा भी न्यूज हो, पर तो हमें जरा भी फीलिंग, साक्षी एकदम अचल अटल और अटल, जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, वो राइट हो रहा है, उसमें कभी गलती नहीं हो सकती। द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले, कौन सा पार्ट बजाने वाले हैं? हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव बनो। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है, हीरो पार्ट बजाने में क्या बनती है? सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देसे न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, आत्मा कौन सी स्टेज पर? मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, देह से भी साक्षी मालिक, साक्षी भी और साथ में क्या? मालिक। मालिक कब बनेंगे? जब हम बाबा की श्री मत पर उसको चेक कर रहे। इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। ये है मूल अभ्यास, इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। लास्ट में क्या बनेंगे? विजयी बनेंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सारे रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़। सिर्फ एक प्रभु से जिसका रिश्ता है वही फरिश्ता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।